देखते हैं तफसीर सूरतुल कहफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलमा है जिससे ये सूरत भी शुरू हुई और कुरान करीम में मजीद और चार सूरतें इसी कलमे से स्टार्ट होती हैं, जिनमें से दो सूरतें हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं वो दो सूरतें? सूरह फातिहा और सूरतुल अनआम, और दो हम आगे पढ़ेंगे, सूरह सबा और सूरह फातर। तो कुल पांच सूरतें कुरान करीम में जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। अब हम्द का माना क्या है? हम्द, जैसे हम देखते हैं तमाम शुक्र, तमाम तारीफ, बिल्कुल सही है, लेकिन तमाम तारीफ, तमाम अच्छी कमालात, ये शुक्र के जज्बे के साथ और मोहब्बत के साथ जब इंसान कहता है तो मोहब्बत के साथ ताजीम भी आ जाती है। तो तारीफ करना उसकी जिससे इंसान बहुत मोहब्बत करता है और जिसकी बहुत ताजीम करता है शुक्र के जज्बे के साथ, ठीक है? तो इसमें तारीफ भी है, इसमें शुक्र भी है। तो इंसान जब कहता है ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका दिल शुक्र के जज्बे के साथ भरा होता है, अल्लाह ताला की नेमतों के इतराफ के तौर पे ये बोलता है कि अल्लाह सारी तारीफ। ये जो अलिफ लाम है ना, इसको कहते हैं लाम इस्तेगराक। इसका मतलब होता है हर किस्म की तारीफ, अच्छी तारीफ लिल्लाह, लिए अल्लाह के है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु, ए अल्लाह सारी की सारी तारीफ तेरे ही लिए। अगर यहां पे होता हमदन लिल्लाह तो होता कि हमदन लिल्लाह लदी होता, तो तारीफ है अल्लाह के लिए, तो मतलब है कि उसकी तारीफ सिर्फ इस चीज के लिए। मगर जब हमने कह दिया कि सारी की सारी तारीफ है, तमाम किस्म की तारीफ उसके लिए, ये जो कलमा अलहम्द का है ना, आप देखें पिछली सूरत एंड जो होती है उसमें क्या कहा गया, वकुल अलहम्दुलिल्लाह, और कह दीजिए, क्या कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। तो जैसे आपको कहे, आप कहें थैंक यू, तो आप फिर आगे से कहते हैं थैंक यू, बच्चे को सिखाते ना आप। यहाँ पे कहा गया आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगली सूरत ही अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रही। इसी तरह पिछली सूरत आप देखें सुबहान अल्लाह से स्टार्ट हो रही, क्योंकि एक अमेजिंग चीज अल्लाह ताला ने बताई, और अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही है जैसे कि सुबहान अल्लाह ही वबी हमदी ही, पीछे सुबहान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतना बड़े कलिमा है कि हदीस में आता है कोई इंसान ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उसको कोई नेमत देता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है उस नेमत से जो उसको दी गई। कोई भी नेमत अगर आपको मिली है ना, चाहे वो सेहत की है, चाहे आपको बिलियन डॉलर मिल गया है, चाहे आपको दुनिया जहान की कोई चीजें, अच्छी चीजें मिल गई, लेकिन घर मिल गए, गाड़ियां मिल गई, जो भी मिल गया, फरमाया हर नेमत जो इंसान को कोई भी दी गई उससे बेहतर कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा बाकी रह जाना है और नेमत जो भी मिली है वो खत्म हो जानी है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां, चाहे वो माल है, चाहे वो इक्तदार है, कुछ भी है, सुभान अल्लाह। और हम्द जो है ना एक मदा भी होती है, वो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, और वो उस वक्त होती है जब इंसान को किसी से कोई फायदा मिलता है तो वो उसकी मदह करता है। लेकिन हम्द उससे बड़ी चीज है, वो इसलिए नहीं सिर्फ की जाती कि इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है या इससे मुझे कोई फायदा मिल सकता है, बल्कि ये वो तारीफ है कि उसके लिए की जाती है जो इसके काबिल है, वो डिजर्व करता है उस तारीफ को। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला डिजर्व करता है, चाहे उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, चाहे वो कुछ भी ना मुझे दे, तब भी उसके लिए हम्द है। ठीक है, तो तमाम की तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। तो हम बहुत बड़ा कलिमा बोल रहे होते हैं जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है जन्नत में सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो दुख और सुख में और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले होते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अच्छी काम होता था तो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिम्मु सालिहात, और कुछ गैर मुआफिक काम होता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो मोमिन का हर वक्त जो है ना वो इसी के बीच में होगा। जाहिर है या तो कोई अच्छी बात होगी या कोई बुरी बात होगी, लेकिन वो हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह में ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। और ये वो कलमा है जो मीजान को भर देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि उसकी हम्द की जाए। और कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक झंडा होगा जो हम्द का झंडा होगा, और ये उम्मत हम्मादून कहलाती है, बहुत हम्द करने वाली। तो जाहिर है आप हम्द करेंगे, आप तो उस झंडे के नीचे आप भी वहां आ जाएंगे। ठीक है, तो हम्द करते रहना है अल्लाह ताला की, हर हाल में हम्द करनी है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ए अल्लाह, सारी तारीफ तेरे लिए है क्योंकि तू इसको डिजर्व करता है, पूरी मोहब्बत के साथ और ताजीम के साथ मैं ये कहती हूँ, क्योंकि सारी अच्छी सिफात तेरी है, परफेक्शन तेरे अंदर है। और लिल्ला जो है ना वो बताता है कि लिए अल्लाह के लिए, खास उसी के लिए, उसी को बिलोंग करती है ये, क्योंकि और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सारी परफेक्ट सिफात हो, अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं। और जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कह रहे हैं अल्लाह जितनी नेमतें मेरे पास है ना वो सिर्फ तेरी तरफ से ही तो है। इसीलिए ये बेस्ट दुआ है और ये बेस्ट जिक्र है। और लिल्लाह में दो बातें, एक तो जो मैंने आपको बताई कि अल्लाह ही को के लिए है सारी तारीफ और सारा शुक्र, और नंबर टू इसमें आती है अल्लाह ताला डिजर्व करता है, उसका हक है, क्योंकि तो उसके उसके जैसा कोई और है ही नहीं ना, नहीं सकम इसलिए शही। तो यहाँ पे ये लिल्लाह का ली जो है ना ये खास करने के लिए, अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही का हक है, दोनों माने इसमें, समझ आई बात। और अल्लाह का नाम उसके माने बहुत सारे हैं, लेकिन अल इलाह एक कॉमनली जो आप ज्यादा याद रख सकते हैं, अल और इलाह को जमा कर दिए तो अल्लाह बन गया। और इलाह के भी और बहुत से जहां माने हैं, वहां ये माना है कि जिससे इतनी इंसान मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि अपने आप को उसके आगे गिरा दे, बिछा दे, सबमिट कर दे उसके आगे, वो महबूब जिसके लिए इंसान अपना आप देते, उसकी पूजा करें, वो है इलाह, सुबहान अल्लाह। तो जब हम कहते हैं ला इलाह इल्लल्लाह, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो महबूब जिसके आगे मैं अपने आप को बिछा दूं, गिरा दूं, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, कोई और नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह है। व्हाट अ फ्रेज, क्या बात है इसमें कर समझ के कही जाए। और आप देखें अल्हम्द का जो लफ्ज है ये लिल्ला के अलावा और किसी लफ्ज के लिए साथ नहीं आता, आप कहीं नहीं, यानी अल्लाह ताला के और अस्माए हुस्ना के साथ भी नहीं आता, अल्हम्दुलिर्रहमान अल्हम्दुलिर्रहीम ऐसा कुछ भी नहीं आता। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आता है बताएं, सिर्फ यही क्यों आता है? एक तो इसमें बात यह है कि देखें जो अल्लाह का नाम है ना इसमें उसकी सारी सिफात आ जाती है, सारी सिफात, कि वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो गफूर भी है, वो अजीज भी है, वो रजाक भी है, वो قہار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ متین بھی ہے، ساری صفات اس ایک نام میں ہے. تو جب اگر آپ اکیلے اکیلے کہتے الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، الحمد للغفور، تو وہ صرف اس اسپیسیفک اس کی صفت کا خیال ذہن میں آتا اور صرف اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ساری تعریفیں، وہ سارے کمالات اس کے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ گئی. اس ذات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہی ڈیزرو کرتی ہے جس میں یہ سارے ہی کمالات ہیں. اس میں رحم بھی ہے، اس میں غلبہ بھی ہے، اس میں معاف کر دینا بھی ہے، اس میں سب چیزیں آ گئی، جو بھی اسماء حسنہ ہے، جو ہم جانتے بھی ہیں اور جو ہم نہیں بھی جانتے. اللہ اکبر، یہ ہوا الحمدللہ. اچھا، یہ جو پہلی پانچ آیات ہیں نا، یاد رکھیے گا ان میں قرآن کریم کا مقام بتایا گیا ہے، قرآن کریم کی فضیلت اہمیت یہ بتائی گئی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ کے سورت کو پڑھیے گا، یہ سورت ہمیں جمعے کے دن پڑھنے کو کہی گئی، یعنی ایوری ونس اے ویک آپ اس سبق کو دہرا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی تو خاص باتیں ہوں گی سورت میں کہ جو ہمیں کہا گیا ایوری ویک آپ اس کو ریپیٹ کریں، یعنی کہ ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لی تو بس کافی ہے. ایوری ویک تو کوئی نہ کوئی میسج ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ میسج دینا چاہتا ہے اور اس کے ریمائنڈر چاہتا ہے کہ ریمائنڈ ہوتا رہے، وہ میسج ہمیں بار بار دہرایا جاتا رہے تاکہ ہم یاد رکھیں اس میسج کو. کوئی تو امپورٹنٹ چیز ہوگی. ونس اے ایئر کیوں نہیں کہہ دیا؟ رمضان کے رمضان کیوں نہیں کہہ دیا؟ مہینے میں ایک دفعہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ نہیں، ہر ہفتے یاد کروں. اب الحمدللہ آگے کیا بات آ رہی ہے؟ الذی انزل، وہ ذات. کون سی ذات؟ پیچھے کون ہے؟ سب موصول ہے نا، یہ الذی پیچھے کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ. اللہ وہ ذات ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ جہاں جہاں پہ آیا نا سورتوں میں بھی آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تو کوئی الحمد کے بعد نا کوئی بہت بڑی بات کو بتایا گیا، رب جہانوں کا، کائنات کا. اور عالمین میں پتہ ہے کون کون ہے؟ کون کون ہے بتائیں، کون کون آ جاتا ہے عالمین؟ عالمین میں ہر چیز آ جاتی ہے سوائے اللہ کے. سبحان اللہ، ساری مخلوق. گن سکتے ہیں آپ مخلوق کو؟ جان سکتے ہیں آپ مخلوق کو؟ جانتے تک بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب ہے، ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کو رزق دینے والا ہے اور ان کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، وہ سارے سب چیزوں کو. کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری دفعہ جب الحمد کا لفظ آیا تو پھر بھی بہت بڑی بات کی، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، ظلمتوں اندھیروں اور نور کو پیدا کرنے، وہاں پہ بھی الحمد کا لفظ. بہت بڑا کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات، کوئی بہت بڑا شاہکار، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ بات سمجھ لی نا آپ نے. اب آئیں یہاں پہ تیسری جگہ الحمد کا لفظ آیا، یعنی الحمد سے بات شروع کی. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر چیز پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے وجود دیا، یہ مجھے کشائش دی، مجھے چھت دی، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دی. ہم کتنی باتیں کریں گے نا الحمدللہ کے ساتھ. یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بات کی گئی، کسی اور ہی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کو شاید، میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں، شاید اس کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ اس رب کا شکر، اس کی ساری تعریف ہے جس رب نے، جس اللہ نے کیا کیا؟ अनजला अला आबदिहिल किताब, जिसने नाजिल की अपने बंदे पर किताब। मैं क्या करूं कि एक एक लफ्ज इस काबिल है कि इसके ऊपर पूरा पूरा लेक्चर हो। आज मैं सोच रही थी कि कैसे हम ये सबक मुकम्मल करेंगे, इतना कुछ है इसमें। अनजला ऊपर से नीचे आने को कहते हैं, हम उर्दू में भी बोलते हैं नाजिल, तुम कहां से नाजिल हुए, ये मनो सलवा नाजिल हो गया। हम ऊपर से नीचे आने को कहते हैं उतारने, उतारा ये लफ्ज बोलते हैं। इसका मतलब कुरान कहां से आया, ऊपर से नीचे आया, और अल्लाह ताला फरमाता है उसने नाजिल किया, तो अल्लाह ताला कहां है, ऊपर है। अकीदा दुरुस्त करती हैं ये आयात, ये कहना अल्लाह हर जगह मौजूद है, यहां भी अल्लाह वहां भी अल्लाह, क्या दरख्त में भी अल्लाह, जमीन के अंदर भी अल्लाह, पानी में, नाउस बिल्ला, ऐसी बात कहना सही नहीं है। अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से हर जगह नहीं है, आसमानों पे है, इसीलिए कुरान वहां से नाजिल हुआ। यहां से क्यों नहीं नाजिल हो गया, पानी से आ जाता, जमीन से आ जाता, अल्लाह तो हर तरफ ही, ऊपर से नीचे आया है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अल्लाह हर जगह है, हम अपनी तरफ से तो बड़ा बोल रहे होते हैं कि बड़ी अल्लाह की तारीफ कर दी, ये नहीं। हां अल्लाह ताला अपनी ताकत, अपने गलबे, अपनी कुदरत, अपने इल्म, अपनी समात, अपनी बसारत, इन इन अपनी कुव्वतों, अपनी कुदरतों के मामले में उसके हर जगह है कुदरत, हर जगह इल्म, हर जगह उसकी नजर है, हर जगह वो सुन रहा है, हर जगह उसकी पावर है, हर जगह से वो बाखबर है। मगर ये कहना कि वो हर जगह पे मौजूद, यहां पे भी है, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, हर चीज के अंदर अल्लाह है, पत्ते के अंदर अल्लाह, फूल के अंदर अल्लाह, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कहना, ठीक है। अल्लाह आसमानों के ऊपर है, फौका सबा समावात, 100 से जायद दफा हदीस में भी इस चीज के बारे में सबूत मिलता है कि वो ऊपर है, अपने अर्श पे मुस्तवी है, कुरान कहता है। तो क्या अर्श हर जगह, तो अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है इसमें। तो उसने नाजिल की आला अब्दिहिल किताब, अपने बंदे पर, यहां पे क्यों नहीं कहा आला हबीबी, आला खलीली, आला रसूली, ये क्यों नहीं कहा, बल्कि बंदा कहा, इसलिए कि इंसान का जो शर्फ है, जो उसका ऑनर है अल्लाह के यहां, वो इसमें है कि वो उसका बंदा बन के रहे, अल्लाह का बंदा बन के दिखाए, उसकी गुलामी में आ जाए, समझ आए। इंसानों के अंदर, इंसानी माशरे के अंदर गुलाम सबसे लोएस्ट स्टेटस का बंदा समझा जाता है, उससे नीचे कोई चीज नहीं होती, गुलाम से नीचे सबसे नीचे एक गुलाम होता है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं माशरे के अंदर, उसको कुछ भी, कोई उसका कोई भी मकाम नहीं है, ठीक है, ये इंसानों में है। लेकिन जब अल्लाह के सामने इंसान हो तो उसकी इज्जत किस में है कि वो उसका अब्द बन जाए, वो उसका बंदा बन जाए, ये इंसान की इज्जत है, इसमें इंसान का शर्फ है, इसके अंदर उसकी बड़ाई है। जितना इंसान अल्लाह ताला के अब्द होने की इंतहा करता है, अल्लाह ताला उसको उतना बुलंद करता है, जितना इंसान गुलामी की इंतहा करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही अता करता है। तो अब्द यानी अल्लाह का बंदा, उसका गुलाम, इसी के लिए तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया कि इंसान अल्लाह की इबादत करे, उसका अब्द बन के रहे। अबूदियत में आजी भी है, खुद को नीचा कर देना, खुद को बिल्कुल हकीर कर देना, छोटा कर देना, मोहब्बत के साथ, ताजीम के साथ, ये है अब्दियत। हम अल्लाह के वाकई बंदे हैं? नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, अमतुल्ला अल्लाह की बंदी, लेकिन क्या गुलामी है जिंदगियों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद है, तमाम इंसानों में सबसे बुलंद, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो टाइटल देता है, आप सूरह इसरा भी उठा के देख लें, सुबहान अल्लदी असरा बी अब्दिही, सुबहान अल्लाह ताला की जात सुबहान है जो अपने बंदे को सैर के लिए लेकर गया। वहां पे भी अब्द का जिक्र, यहां पे भी अब्द का जिक्र, इससे पता चलता है अल्लाह ताला के नजदीक इससे बड़ा कोई मकाम नहीं हो सकता कि इंसान गिर जाए उसके आगे, झुक जाए उसके आगे। सब अपनी अनाएं, सब अपनी मर्जियां, सब अपनी ख्वाहिशात एक तरफ रख दें, बिछ जाए, झुक जाए, गिर जाए, सिर्फ फिजिकली नहीं सजदे में, अपना सब कुछ उसके आगे डाल दें, सबमिट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजला अला अब्दिहिल किताब, कि उसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। किताब किससे? कतबा से। कतबा कहते हैं लिखी हुई चीज को, और लिखी हुई चीज यानी इससे पता चलता है कुरान तो उस वक्त लिखा हुआ थोड़ी आया था, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे मुबारक पे उतरा था, लेकिन इसमें ये पता चलता है कि ये लिखा जाएगा, इसकी बशारत है, लिखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। और ये लिखा जा सकता है, ये भी इसमें पता चलता है, और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो इसको लिखे, इसको सेव करे और इसकी आगे कॉपीज बनाए और इसको आम करे। तो कुरान का एक नाम भी है अल किताब, कुरान करीम के बहुत सारे नाम है, बाज़ उलमा ने तो 90 से भी ज्यादा नाम बताए, अज़िक्र, अल फुरकान, अर्रहमा, अल हुदा, अश्शिफा, अन्नूर, अर्रूह, अल मौइदा, अल अजीज, अल मजीद, बहुत सारे नाम है। तो कुरान करीम के नजूल पर जो अल्लाह ने अपने बंदे पर नाजिल किया, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, समझ आई बात? यानी ये इतनी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला की हम्द बयान की। कि मैंने आपको बताया ना, अल्हम्द का लफ्ज ये बहुत बड़े कारनामों, बहुत बड़ी बात के ऊपर कुरान पाक में आया है, और उनमें से एक क्या है कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी नेमत दी है, कभी इसको नेमत समझ के देखा भी है आप? क्योंकि जब इंसान किसी चीज को नेमत समझता है ना, तो नेमत पे शुक्रगुजारी वाजिब हो जाती है। कभी इसकी शुक्रगुजारी की? कभी अल्लाह ताला को ये आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने ये नेमत मुझे दी? कब लास्ट टाइम आप इस नेमत पे खुश हुए थे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? और इस उम्मत पे कितने लोग हैं जो इस कुरान को नेमत समझते हैं? और नेमत का कोई हक भी तो होता है, हाँ? कोई हक होता है नेमत का या नहीं? नेमत का कोई हक होता है ना, इसका हक क्या है कितने लोग जानते हैं? कितने लोग हैं जो इस नेमत के हक अदा करने में लगे हुए? और ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला ने ये नेमत की है, और आप इस नेमत की वजह से रसूल बने। जब ये कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो आप रसूल नहीं कहलाए, ये कुरान के नजूल से आप रसूल कहलाए ना, ये वही आई, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लदी खलक, ये कर वही आई थी तो आप रसूल बने हैं ना, कुरान उतरा है तो रिसालत मिली है, इतना बुलंद मुकाम मिला है। आज भी जो बुलंद मुकाम पाना चाहता है, अल्लाह के नजदीक दर्जे पाना चाहता है, तो इस कुरान के बगैर तो मुमकिन नहीं। ये इतनी बड़ी फेवर है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत पे की है, उसका इतना बड़ा फजल है, उसको मेंशन किया गया यहाँ पे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु, तुम्हें बेस्ट वो है जो कुरान पढ़ता, सीखता, समझता और उसको सिखाता है, कुरान की तालीम लेता है और तालीम देता है। तो ये मामूली बात नहीं है। तो जितने कुरान से आप फायदा उठाना चाहते हैं ना, उतना ज्यादा अल्लाह की गुलामी में आए, उसके अब्द बने, तो कुरान से फायदा मिलेगा, उतना ही कुरान से आप सीखेंगे। तो और ये भी पता चला कि ये कुरान अल्लाह ने नाजिल की है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ लाने वाले हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको खुद नहीं बनाया। और कुरान करीम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है, अला आबदी ही, अपने बंदे पर, किसी और पे नहीं उतरा। जैसे मिर्जा कादियानी, उसने कहा कि कुरान मेरे ऊपर भी उतरा है, ऐसा नहीं है, किसी और पे नहीं उतरा। या बाजों ने कह दिया कि हजरत अली पे उतरना था, मगर गलती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतर गया, ऐसा भी नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया 15 दिन के बाद वही नाजिल हुई थी। ये इस बात की दलील है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुरान गढ़ने वाले होते, जैसे इनका इल्जाम था, तो अगले दिन ही लेकर आ जाते कि मैं क्यों झूठा पढूं लोगों के सामने। लोग इतनी बातें बनाने लगे हैं, ये इसकी वजह से और दीन से दूर हो जाएंगे, इनको तो प्रोपोगंडा का मौका मिल जाएगा, तो मैं खुद ही कुछ बना के ले आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबस हैं, क्योंकि ये अल्लाह ही की तरफ से नाजिल होता है, और जब वो चाहे नाजिल करे, तो आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह ही की तरफ से उसका ही पैगाम पहुंचाने वाले हैं, अपनी तरफ से एक लफ्ज बात भी बोलने वाले नहीं, वरना 15 दिन में कभी तो कुछ कहते। तो आपकी हक्कानियत की दलील है। और फरमाया, वलम यजअल लहू ऐवजा, और इस कुरान के अंदर कोई ऐवज नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कोई क्रुकडनेस नहीं है, कोई इसमें टेढ़पन नहीं है। जैसे एक लाइन सीधी जा रही हो तो एकदम टेढ़ी हो जाए, या एक बंदा बात करता करता कभी कोई बात इधर की कर रहा है, कभी उधर की बात है, तो उसकी बात में ऐवज है। इसी तरह उसको भी कहते हैं जो जो इंसान सीधा चल नहीं सकता, टेढ़ा होके चल रहा है, लंगड़ा होके चल रहा है, वो ऐवज है। तो इस कुरान के अंदर कोई एवज नहीं है। इब्ने अब्बास कहते हैं ये जुमला मुअतरिजा है, यानी असल में मुअतरिजा क्या होता है कि बीच में एक बात कही गई है, असल में क्या था, अनजल आला अब्दिल किताब कय्यम लियुंदर बासन शदीदा, तो आगे आगे बात थी, लेकिन ये बीच में एक बात की गई इनको बताने के लिए, जो अहले किताब एतराजात करते थे इस मजामी या इसके मजामीन में, को बातें बनाते थे, या आज तक भी कोई लोग इसके अंदर से चीजें निकाल निकाल के कोई शोशे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि इस कुरान के अंदर कोई इवज है ही नहीं, यानी कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, किसी एरिया में भी नहीं है, ना पढ़ने में है कि सही पढ़ा ही ना जा सके, ना जुमलों के कोई स्ट्रक्चर में है, ना इसकी कोई ग्रामर में है, ना इसके कोई माने में इम्परफेक्शन है, ना कोई मैसेज में इम्परफेक्शन है, हर तरह से ये कंप्लीट है। जो इंफॉर्मेशन भी इसमें है वो बिल्कुल सच्ची है। अब ये जो थे ना, वो लोगों को इस तरह की बातें करके तो उनको इस्लाम से दूर करने की कोशिश करते थे, और आज भी लोग जो हैं जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं ना, वो ये कुरान से ना कुछ ऐसी बातें निकाल के लाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ला नहीं सकते, इसलिए कि इसमें एवज नहीं है, वो एवज निकालने की कोशिश करते हैं। अब कुरान कहता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का सारी तारीफ है, जिसने ये कलाम नाजिल किया उसने इसमें कोई एवज रखा ही नहीं है, कहां से लाएंगे, ये चैलेंज है कि कोई इवज ला के दिखाए, निकाल के दिखाओ। इसके बाद मुझे ये बताएं, जब आप ये बात पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके दिल को मुतमईन हो जाना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करे, कोई कह रहा है इसमें ये आयतें क्यों हैं, इसमें गुलामों की ये बात क्यों है, इसमें ये क्यों है कि मुशरिकों को कत्ल करो जहां पाओ, इसमें ये बात ऐसे क्यों लिखा है, ये क्यों किया, ये इस पे आपके दिल को बेचैन नहीं होना चाहिए, आपके ईमान में तजलजल नहीं होना चाहिए, आपको शक को शुभात में नहीं पड़ना चाहिए, कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दी इसमें कोई इवज ही नहीं है, बस बात खत्म ही हो गई। हाँ, मेरे हो सकता है मुझे ना कुछ समझ आती हो, हो सकता है मुझे कुछ और ज्यादा इल्म लेने की जरूरत है ताकि मैं इनको जवाब बता सकूं इसका, लेकिन कभी ये ना सोचे कि इसमें कोई बात है ऐसी जो कि सही नहीं है, कोई बात इसमें इवज की है ही नहीं। और इसके बाद आपको इस पे फखर होना चाहिए कि आपके पास वो किताब मौजूद है जिसमें इवज नहीं है, इसलिए कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आज कहीं पे कोई ऐसा कलाम मौजूद नहीं, इस जमीन के ऊपर कोई ऐसा कलाम इस वक्त नहीं है जो सरासर अल्लाह ताला की तरफ से हो और जिसमें जरा बराबर शको शुभे का नामो निशान भी ना हो, किसी के पास भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास है। तो जब ये सूरत में यहां पे पहुंचे, दिल को साफ कर लें। पहले आया था ना, शुरू किया था कुरान हमने तो पढ़ा था, हमने ला रईबा फी, इसमें कोई शक नहीं, अब यहां पे कह दिया गया कोई इवज है ही नहीं, तो फिर तो दिल साफ हो जाना चाहिए, कोई शक भी नहीं है कि कोई झूठी बात हो और कोई इवज भी नहीं है। अब कोई अगर आपसे कहता है ना कि आप क्या आपके पास दलील है कि देखिए इस्लाम ही सच्चा दीन है, कोई प्रूफ है आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सच्चे नबी हैं, कोई प्रूफ है? जी हाँ, हमारे पास प्रूफ है, और जानते हैं आपका प्रूफ क्या है? कुरान, कुरान इज द प्रूफ, ये बताता है, ये कलाम बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना के ला ही नहीं सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, वो ये बातें कहां से ला सकते थे, ना उन्होंने कभी समुद्रों का सफर किया था, ना उनको हिस्ट्री का इस तरह से पता था, ना उनको असहाबे कहफ का पता था, इसके तराजुर में देख ले, ना उनको फ्यूचर की बातों का पता था कि कयामत में क्या होगा, तो खुद नहीं ला सकते थे ऐसी बात बना के, अगर ऐसी बनानी होती तो वो 40 साल के होके क्यों बनाते, उसे पहले ही बना लेते। तो सबसे बड़ा प्रूफ ये, और फिर इंसानी कलाम होगा ना कहीं वजह आ ही जाए, कहीं को टेढ़पन आ जाए, कोई इंसानी कलाम में देखें, हर बुक में आप देखते हैं ना शुरू में लिखा होता है कि इसमें अगर कोई कोई गलती है आप उसकी निशानदेही करें, आप हमें बताएं इसमें कहाँ कहाँ है, तो फिर हम उसको सही करें, फिर नेक्स्ट एडिशन आता है उसमें उसको वो करेक्शन करके भेजती है, फिर उसे नेक्स्ट एडिशन आता है उसमें और भी करेक्शन की होती है, जो वो फालतू चीज होती निकाल दी गई होती, कुछ इधर उधर की कुछ हो गई गलती हो गई वो निकाल दी। सुभान अल्लाह, कुरान में ये बात नहीं है कि कोई किसी को कहीं गलती मिले ना बता देना फिर नया एडिशन आएगा, कुरान का एक ही एडिशन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। तो ये है प्रूफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, ये है प्रूफ कि इस्लाम ही दीन हक है, क्योंकि वो इस किताब में कोई इवज निकाल ही नहीं सकता, और जब कोई इवज नहीं निकाल सकता इसका मतलब ये इंसानी कलाम ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, किसकी तारीफ हो रही है जहन में रखिएगा, स्टार्ट हुआ सूरा किसकी तारीफ से स्टार्ट हुआ? अल्लाह ताला की तारीफ, जिसने इस कलाम को उतारा। आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए ये बात कि हर जुमे को हम ये बात समझें कि हमें कितनी बड़ी नेमत मिली है, कितनी बड़ी नेमत मिली है, नेमतों को गिनने लगे तो शायद आप उनमें एंड में कहीं जाकर कुरान भी लिख दें, तो इतनी अहमियत है ना हमारी जिंदगी में इसकी, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह की है जिसने तुम्हारे ऊपर ये नाजिल किया।